यो भूतं च भव्यं च सर्वं यस्याधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। कई दिन से प्रसंग चल रहा है धर्म अर्थ ज्ञान और वैराग्य और पांचवा मोक्ष। अर्थ ज्ञान और वैराग्य मोक्ष की प्राप्ति के साधन प्रधान रूप से माने गए हैं। अब मोक्ष के विषय में भी बहुत से संदेह पैदा होते हैं कि है भी या नहीं, परंतु वर्तमान में जितने भी संप्रदाय हैं, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, जैन आदि सभी मोक्ष की बात कहते हैं। कुछ लोग कयामत के समय मोक्ष की बात कहते हैं, कुछ कहते हैं ज्ञान होने पर मोक्ष प्राप्त होता है। मैं भी इस विषय में बहुत कुछ मनन कर रहा हूं। अब विचारधाराएं विद्वानों की भिन्न भिन्न हुआ करती हैं, बुद्धियां भी भिन्न भिन्न होती हैं। उपनिषदकारों ने तो कुछ एक मंत्र आता है, इन्होंने तो मोक्ष की अवधि 3 मील 10 खरब 40 अरब वर्ष मोक्ष के माने हैं। अब इस प्रकार के मोक्ष पर भी कुछ संदेशा होता है, क्योंकि इतना लंबा मोक्ष जो है, अब ये लोग बहुत से आचार्य शरीरों का भाव भी मोक्ष में मानते हैं। कुछ आचार्य ऐसे हैं हिंदुओं में भी, ईसाइयों में भी, मुसलमानों में भी, कि वहां शरीर वर्तमान रहता है और वो इस स्थान से कोई अन्यतर स्थान है मोक्ष का। तो इस प्रकार के मोक्ष के विषय में भी संदेह पैदा होता है। एक तो ये संदेह होता है कि जब तुम परमात्मा को सब जगह व्यापक मानते हो, तो यहां कश्मीर में भी वर्तमान है परमात्मा, जो उस मोक्ष के देश में परमात्मा रहता है, जो सड़क के देश में परमात्मा रहता है, जो साल्वेशन के स्थान में भगवान रहता है, क्या वो भगवान कोई अलग है इससे? जो तुम वहां जाने की बात कहते हो, तुम मुक्त होकर के यही पहलगाम के एक कोने में क्यों नहीं ठहर जाते? भगवान तो यहां भी वर्तमान है। अभी वहां के भोगों की बात, अब जैसे इंडिया की अपेक्षा अमेरिका में भोगों की सामग्री अधिक है, अगर इस प्रकार का, या जापान में भी यहां की अपेक्षा भोगने योग्य पदार्थ ज्यादा हैं, जिन देशों में ज्यादा धन है, अर्थ है, संपत्ति है, वहां भोग के साधन भी बहुत हैं। यदि कोई ऐसा देश स्थान साल्वेशन का मानोगे, कोई इस प्रकार का देश है, तो वहां शरीरों का भी भाव मानना पड़ेगा, वहां शरीरों के द्वारा ही सुख आदि का भोग मानना पड़ेगा। अब परमात्मा की तो बात रही नहीं, क्योंकि परमात्मा तो यहां पहलगाम में भी ऐसा ही है, और न्यूयॉर्क के अंदर भी ऐसा ही है, और टोक्यो में भी ऐसा ही है, और इंग्लैंड में भी भगवान तो एक जैसा ही है। अगर भगवान के मिलने की बात का मोक्ष मानते हो, तब तो सर्वत्र एक ही समान है। अगर भोगों की विशेषता का मोक्ष मानते हो, तो इस संसार में इस प्रकार के देश हैं, वहां जाकर के रहना चाहिए। अब ये बेचारा माइकल बैठा न्यूयॉर्क में रहने वाला, अगर वहां साल्वेशन होता तो ये बेचारा क्यों यहां आता उससे लौट करके। तो इन देशों में, इन स्थानों में, इस पृथ्वी पर तो ऐसा मोक्ष है नहीं जहां सर्वथा सुख की बातें हो और सुख ही सुख पुरुष रहता है। तो इस लोक में तो ऐसे स्वर्ग की बात बनती नहीं। अगर कोई और देश विशेष है तो वहां भी आप भोगों की ही प्रधानता मानोगे, न्यू यॉर्क और टोक्यो से ज्यादा भोग मान लोगे, यही तो मानोगे। परंतु जहां इन देशों में सब भोगों के साधन होते हुए इंद्रियों के सब भोगों की उपलब्धि होते हुए भी वहां भी आप दुख का अनुभव कर रहे हो, क्योंकि जहां दुख है वहां सुख जरूर रहना है, जहां रात है वहां दिन जरूर रहनी है। तो जहां सुख रहेगा वहां दुख जरूर रहेगा, दोनों का संबंध है। तो ऐसा कोई देश विशेष तुम ढूंढो के आकाशमंडल में कि जहां सुख की बात बनी रहती हो और सदा मनुष्य सुखी रहता हो। फिर वहां या तो इस शरीर के द्वारा, ये शरीर तो तुम्हारा कब्र में चला जाता है, हिंदू अग्नि में जला देते हैं, या कोई और पारसी चीलों को खिला देते हैं। ये शरीर तो वहां जाता नहीं, यदि और कोई शरीर वहां जाता है भोगने के लिए तो उस शरीर की भी उत्पत्ति और विनाश तो मानना पड़ेगा कि कितने काल तक वो शरीर रहेगा जो और शरीर होता है। और वो शरीर, क्योंकि ईसाई मुसलमान तो इसमें वो शरीर मानते नहीं है कि जो धर्मा धर्म संस्कारों को लेकर के, क्योंकि अगर इसमें शरीर मानते तो ये लोग पुनर्जन्म भी मान लेते। हिंदू लोग मानते हैं कि इस शरीर के अंदर एक और सूक्ष्म शरीर है। इनकी तो बात कुछ बन जाती है कि शायद उस स्वर्ग में ये सूक्ष्म शरीर निकल करके चला जाएगा और ये वहां वो भोग भोग लेगा। और ये दोनों संप्रदाय जो है ये स्थूल शरीर का ही भान मोक्ष में मानते हैं। तो वो शरीर जो है फिर वो कहां से प्राप्त होता है? फिर इनके पैगंबरों ने तो ये कहा है कि जिस वक्त कयामत आती है कब्र के अंदर जो मुर्दे दबे हुए होते हैं भगवान उनको जगा देता है। अब भाई यहां वर्तमान में तो कोई ऐसी बातचीत होती नहीं, तुम 100 साल 50 साल के मुर्दे सिवाय हड्डी के वहां ये तो कुछ रहना नहीं, हड्डी तो गलती कम है तो इनके सिवाय वहां कुछ मिलेगा नहीं। तो वहां भगवान अगर इन कब्रों से ही बुलाता है तो क्या वो धर्मा धर्म संस्कार या पाप पुण्य के संस्कार कब्र में ही पड़े रहे, उसमें उन संस्कारों को धारण करने वाली कौन चीज होगी? क्या वो कब्र में ही खत्म हो गए क्योंकि शरीर गल सड़ गया, सिर्फ हड्डी रही है उसके साथ ही खत्म हो गए, या फिर वहां कोई और शरीर बन जाते हैं? तो उन शरीरों का उपादान कारण कौन होता है, किससे वो बनते हैं, किस मैटर से बनते हैं? या तो माता पिता से बन जाते हैं या कोई और भी साधन हो सकता है, वहां कौन सा मैटर होता है उन शरीरों के बनाने के लिए? तो इस प्रकार की शंकाएं बहुत पैदा होती हैं। हिंदू लोग भी वहां शरीर का भान मानते, इस सूक्ष्म शरीर की बात कहते हैं। तो इस ये सूक्ष्म शरीर भी उत्पन्न होने वाला है जो इसके अंदर आया हुआ है, चाहे इसका समय लंबा हो उत्पत्ति और विनाश का, पर उत्पत्ति और विनाश उसकी भी माननी पड़ेगी। अगर ये शरीर वहां रह करके भोग करता है तो किसी इसको भी किसी दूर देश में जाने की जरूरत नहीं, वो सूक्ष्म पंचतन मात्रा या भोग तो यहां भी वर्तमान हो सकते हैं, इस पृथ्वी के अंदर भी किसी देश में जाकर के भोग सकता है। वो ऐसा देश विशेष कौन सा है जहां सूक्ष्म शरीर जाकर के ही वैसा भोग करेगा? और फिर क्योंकि अभी तक जो भौतिक विज्ञानवादी है इनका तो विचारधारा ये है कि चंद्रमा को उत्पन्न हुए 8 अरब वर्ष हो गए हैं, हिंदू लोग कहते हैं कि 4 ही अरब वर्ष पैदा हुए हैं। तो इस प्रकार क्या पता विज्ञान और बढ़ता चला जाए, क्योंकि चंद्रमा कहते इस पृथ्वी से टूटा था जब बनी थी, ये पृथ्वी इसका एक भाग एक हिस्सा है, तो ये हमारी पृथ्वी तो उससे भी ज्यादा टाइम की होगी या ज्यादा वर्षों की होगी, तो ये 10 अरब की मान लो या कुछ उतने ही मान लो, और साइंस उन्नति करेगी शायद 12 अरब या 10 अरब वर्ष तक पहुंच जाए जब, और खोज करेंगे चंद्रमा के टुकड़ों की, उसके पदार्थों की या और मंगल आदि ग्रह हैं, तो क्या पता वो और ज्यादा समय की बात बन जाए। तो ये इस प्रकार का जो माप तोल किया हुआ है ये भी अभी तक सबका ही गलत साबित हो रहा है। ये अभी ठीक निश्चित नहीं कहा जा सकता कि कितने वर्षों का ये सर्कल सा होता है, उत्पत्ति विनाश और स्थिति और परलय काल की अवस्था ये कितना है। हिंदुओं ने तो ये माना था 12 का, तो अब ये 8 दिए 24 का बन जाता है, 24 अरबों का बन जाता है, और साइंस उन्नति करेगी क्या पता 48 अरब वर्ष का बन जाए, कितना बन जाए। फिर भी उस काल में भी इन शरीरों का विनाश मानना पड़ेगा, सारे शरीर अपने कारणों में जाएंगे। तो तब है उस काल में वहां मोक्ष का सुख कौन से शरीर भोगेंगे, क्योंकि इन लोक लोकांतरों की सृष्टि का तो सारा विनाश कारण में जाना मानोगे एक नहीं। तो जब ये सब कारण में जाकर के स्थित होंगे उस वक्त शरीर तो रहेंगे नहीं, अंतःकरण मनादि वीर नहीं रहेंगे, कुछ भी नहीं रहेगा। उस काल में किसके द्वारा ये सुखों का उपभोग करेंगे, और सुखों के साधन भी नहीं होंगे, भोगने वाले भी नहीं होंगे, सुखों के साधन भी नहीं होंगे। तो कौन सा मोक्ष है जहां तुम इस प्रकार के सुखों की बातें करते हो, कल्पनाएं करते हो, कल्पना भी कुछ किसी आधार को लेकर के तो होनी चाहिए। तो इत्यादि सालवेशन के विषय में अनेक शंकाएं पैदा होती हैं। अब आप लोगों की अपेक्षा अगर कहीं स्वर्ग में जाना पड़े तो पहले मेरा नंबर आएगा, सालवेशन में अगर जाना पड़ेगा तो पहले मेरी सीट रिजर्व होगी वहां जाने के लिए। अब तुम शायद अगर बिना तर्क की दृष्टि से देखोगे तो मुझे अपने से ज्यादा ही कुछ योग्य मानोगे इस बात में, परंतु जब मैं अपने अंदर निरीक्षण करता हूं, अपनी खोज करता हूं, तो आज से मैं 75 वर्ष पहले जैसा था वैसा ही अब भी हूं। इतना ज्ञान ध्यान पढ़ लिख के साधना करके अभ्यास करके सारे साधन करा करके भी जहां आज से 75 वर्ष पहले था वहीं अपने आप को खड़ा देखता हूं, वो कैसे। अब ये लोग कहते हैं सारे संप्रदायवादी, और जब ये काम क्रोध लोभ मोह आदि ये जब खत्म हो जाते हैं तब जाकर के मोक्ष मिलता है। मैं कहता हूं कि ये काम क्रोध लोभ मोह आदि इनका विनाश ही नहीं होता, ये खत्म ही नहीं होते। मेरे अंदर भी वैसे संस्कार मौजूद है जो युवावस्था में थे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार राग द्वेष आदि के, वैसे आज भी वर्तमान है। अब इतने जीवन के संस्कार, 90 वर्ष के संस्कार या क्या नाम 85-80 वर्ष के संस्कार सारे भरे पड़े हैं, किसी का विनाश ही नहीं देख रहा हूं। जब भी स्मरण करता हूं सारे श्रृंखलाएं घटनाएं सब याद आ जाती, ना स्मरण करूं तो नहीं आती। अब ऐसा मालूम होता कि ये स्वाभाविक धर्म है, स्वभाव का विनाश नहीं हुआ करता। ये ठीक है कुछ पतले से हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे, उनको काम में नहीं लाएंगे, काम को क्रोध को लोभ मोह को काम में नहीं लाएंगे, पर विनाश तो नहीं हुआ। और फिर माना थोड़ी देर के लिए इस जीवन के भी संस्कार दब जाए मर जाए, हम तो अनादिकाल से मान रहे हैं कि जन्म अनादिकाल से होते चले आ रहे हैं, इनकी कोई आदि नहीं, और उन जन्मों के असंख्य संस्कार भी इसके कारण शरीर के गर्भ में पड़े हुए हैं। मेरे इस सारे जीवन के कर्मों का संस्कारों का भोग नहीं हुआ, जितने संस्कार मौजूद हैं उनका भोग मैं नहीं कर पाया। अब जैसे विवाह शादी कर करके बच्चों के सुखों का, स्त्री के सुखों का, आनंदों का भोग नहीं कर पाया, पर संस्कार तो है, संस्कारों का तो विनाश नहीं हुआ, जबरदस्ती रोके रखा संस्कारों को। जबरदस्ती रोकना कोई बुद्धिमत्ता की बात तो नहीं है। अच्छा माना बैराग से भी शिथिल बनाए होते, पर फिर उनकी जागृति उनका स्मरण क्यों होता है? तो बैराग भी स्वभाव को हटाता नहीं है, और तो स्वभाव ही बैराग से दिन का विनाश नहीं होता। पर विनाश तो कर लूंगा ना, मैं इस जन्म के कर लूंगा, पर वो तो करोड़ों जन्मों के संस्कार और पड़े हैं, जुड़ा हुआ प्रकृति से अब तक यहां तक है, कैसे इसका विच्छेद करूंगा इतने संस्कारों का, अरबों करोड़ों लाखों जिनकी कोई संख्या ही नहीं। जब तुम जन्म की बातें मानते हो, कोई संख्या नहीं जन्मों की, तो उनके भी तो संस्कार पड़े, जैसे इस जीवन के भी लाखों संस्कार अब मौजूद हैं। तो इसलिए इतने संस्कारों का सिलसिला बता हुआ हो शरीर के साथ, तुम उसकी मोक्ष की बात करते हो, हमें तो समझ नहीं आता। बल्कि पहले से जब युवा अवस्था में, शायद उस वक्त के कोई भूला भटका चला जाता भगवान की गोद में स्वर्ग में, तब तो अच्छा था, और अब तो मैं इतने संस्कार लेके बैठ गया हूं। उस वक्त तो संस्कार थोड़े थे, बहुत छोटी सी दुनिया थी, बहुत छोटे से विचार थे, बहुत छोटे से दायरा था, एक घास के कुछ रह करके सुख का अनुभव करता था, यहाँ वो सुख महलों में अनुभव नहीं करता, अपने आप रोटी खाता बनाता था उस वक्त सुख महसूस करता था, अब सेवक और सेविकाएं अब वो सुख महसूस नहीं करता। जब उस सुख को याद करता हूं तो इस सुख की अपेक्षा वो सुख ज्यादा है। तो अब कहने का तात्पर्य ये है कि अगर मोक्ष में कहीं जाने की बात आ जाए तो वो तो मुझे तो अपने लिए तो कम से कम बनती नहीं, तो मैं भेज दूंगा। अगर कोई बात बन जाए तुम्हारी इच्छा तो तुम्हें तो धकेल दूंगा मां, पर मुझे तो मिलना नहीं, क्योंकि इतने संस्कार मेरे अंदर पड़े हुए हैं, इस जन्म के भी करोड़ों ही संस्कार होंगे। 85 वर्ष से स्मृति है, जो 85 नहीं तो 80 वर्ष से तो यारदास है जीवन की, सारे संस्कार वैसे श्रृंखला जब याद करता हूं तो एक वर्ष दो वर्ष सारे वर्ष जन्म तक संस्कारों का स्मरण हुआ, और फिर अगर और अगले जन्मों का करूं तो और सिलसिला बन जाएगा, ये संस्कार उस काल में क्यों थे। तो संस्कारों का सिलसिला टूटता नहीं, खत्म नहीं होता, इसलिए मोक्ष की संभावना।